समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, मारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। और आधे घंटे के इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेशमा तिवारी। रेशमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार जया, एंड हेलो एंड गुड आफ्टरनून लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी एफएम गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज़। एंड एज जया जस्ट मेंशन्ड, वी हैव फॉर यू टुडे अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज और डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, एंड वी बिगिन With the news headlines first.
चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे।
इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स रीपोलिंग इन ऑल 285 पोलिंग स्टेशंस ऑफ पोलता असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन वेस्ट बंगाल। पोलिंग टू टेक प्लेस ऑन द 21st ऑफ दिस मंथ।
राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु।
OPEC plus countries agree in principle to raise oil output targets next month amid ongoing West Asia conflict.
आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Kolkata Knight Riders today. And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we'll talk about World Press Freedom Day. Every year, 3rd May is a date which celebrates the fundamental principles of press freedom to evaluate press freedom around the world, to defend the media from attacks on their independence, and to pay tribute to journalists who have lost their lives in the exercise of their profession. World Press Freedom Day was proclaimed by the UN General Assembly in 1993 following a recommendation adopted at the 26th session of UNESCO's General Conference in 1991. This in turn was a response to a call by African journalists who in 1991 produced the landmark Windhoek Declaration. The Windhoek Declaration is a benchmark for ensuring press freedom around the world. It began at a seminar in Windhoek in 1991, but the ideas exchanged by the African journalists and media professionals acted as a catalyst to encourage press freedom, independence and pluralism in Africa and other parts of the world.
बिल्कुल सही कहा रेशमा। और मानव अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 19 है, वो भी कहता है कि हर किसी को अपनी राय और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, किसी भी माध्यम से जानकारी मांगने, लेने और देने का अधिकार है। फिर भी आज हर महाद्वीप में इस अधिकार पर हमला हो रहा है। आजाद प्रेस का मतलब सिर्फ सुर्खियां नहीं है, इसका मतलब है आपका यह जानने का अधिकार कि ईंधन की कीमतें क्यों बढ़ती हैं, स्कूल क्यों बंद होते हैं और न्याय मिलने में देरी क्यों होती है। जब पत्रकार सवाल नहीं पूछ पाते तो नागरिक जान नहीं पाते, और जब नागरिक जान नहीं पाते तो लोकतंत्र सो जाता है।
एग्जैक्टली, एंड The theme for this year's World Press Freedom Day is Shaping a Future of Peace. This year, the day offers a critical moment to reaffirm freedom of expression and to align journalism, technology, including AI and human rights actors around practical ways to strengthen information ecosystems for the future.
और इस अवसर पर पूरी दुनिया प्रेस की स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धांतों का जश्न मनाती है। यह दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने और मीडिया को उसकी स्वतंत्रता पर होने वाले हमलों से बचाने का एक अवसर है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और उसकी स्वायत्तता के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दिन सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। साथ ही यह मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और इस पेशेवर नैतिकता से जुड़े मुद्दों पर चिंतन करने का भी एक अवसर प्रदान करता है।
According to UNESCO's World Trends Report 2022-25, press freedom has experienced its steepest decline since 2012. This decline is comparable to that seen during the most unstable periods of the 20th century, the two world wars and the Cold War.
और आज ना पत्रकारों को कई नए खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि गलत जानकारी, ऑनलाइन उत्पीड़न, आर्थिक दबाव और सेंसरशिप। सोशल मीडिया के इस दौर में सच्चाई का मुकाबला वायरल होने की होड़ से है, लेकिन हर न्यूज रूम, हर फील्ड रिपोर्ट और हर फैक्ट चेक में साहस आज भी मौजूद है। जानकारी में हेरफेर किए जा रहे हैं, एआई की मदद से गलत इरादे वाले लोग बड़ी आसानी से ये काम कर रहे हैं, जो लोगों के भरोसे और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को कमजोर करता है। साथ ही स्वतंत्र मीडिया को बढ़ती आर्थिक कमजोरी का भी सामना करना पड़ रहा है। बदले की कार्रवाई के डर, ऑनलाइन उत्पीड़न, कानूनी धमकियों और आर्थिक दबाव के चलते खुद पर सेंसरशिप लगाने की जो प्रवृत्ति है वो 60% से भी ज्यादा बढ़ गई है। और इस बीच रेशमा, आपने देखा होगा कि लगातार सरकार काम कर रही है जो फैक्ट चेक लेकर आती है, हमें बताती है कि ये जो जानकारी दी जा रही है वो एआई के माध्यम से है, गलत सूचना फैलाई जा रही है, गलत इरादों से फैलाई जा रही है। और ऐसे में श्रोताओं को ये बहुत ध्यान रखना होगा कि कौन सी जानकारी एआई के माध्यम से किस गलत इरादे से फैलाई जा रही है, इसके लिए उन्हें बिल्कुल आधिकारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इधर उधर सोशल मीडिया के दौर में तो हमें इनसे बचने के लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
एग्जैक्टली, एंड दैट इज व्हाई वी से press freedom is not just for journalists, it is for every citizen, because when the press is free, society is informed. When society is informed, democracy lives. This May 3rd, let's defend those who speak truth to power, because journalism is not a crime. And now, listeners, we have a special news for cine lovers. Yes, the Madame Tussauds has launched a new Icons of India exhibition at its London headquarters, uniting the wax models of celebrities from the world of cinema and cricket. The limited time experience includes 13 figures of leading Indian actors and cricketers. For the month of May and June, the area has been transformed into a vibrant space inspired by Indian culture for visitors to get up close with some of its most iconic wax figures, including Amitabh Bachchan and Sachin Tendulkar. Steve Blackburn, general manager at Madame Tussauds London, said, "Bollywood's global appeal is huge and London's love for Indian cinema and cricket grows stronger every year." He added, with Icons of India exhibition, they are bringing fans closer than ever to the stars they love. Some of the wax figures have made their journey to London on loan from other Madame Tussauds attractions, including Virat Kohli's wax figure from Bangkok and Aishwarya Rai's wax figure from New York. The High Commission of India in London described the exhibition as a celebration of cultural ties between India and the United Kingdom, highlighting the global appeal of Indian cinema and cricket.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है।
The National Institute of Ocean Technology, NIOT, is set to strengthen coastal monitoring along the Puducherry coastline with the installation of a high-frequency radar system. The advanced technology will enable real-time observation of ocean surface currents and wave patterns up to 200 kilometers offshore, enhancing preparedness for extreme weather events, including cyclones. More from our correspondent.
NIOT has identified Kilinjalmed and Akkampetta in Karaikal as the most suitable locations for installing the radar systems after evaluating nearly 10 potential sites. A team led by NIOT Director Balaji Ramakrishnan recently visited Puducherry and held discussions with officials from the Department of Science, Technology and Environment to finalize the locations. The initiative is part of a broader collaboration between the Puducherry administration and the Union Ministry of Earth Sciences. Under a memorandum of understanding, key focus areas include ocean observation, coastal climate advisory services, sustainable fisheries, marine spatial planning, and ecosystem management. As a major outcome, a coastal ocean observation facility is also proposed for Puducherry and Karaikal. According to NIOT, the Karaikal radar station will function in coordination with an existing station at Kadalur, improving the accuracy and resolution of coastal current data. The radar is capable of monitoring oceanic and atmospheric parameters such as current speed, wave dynamics, wind patterns, and temperature gradients within a radius of up to 100 kilometers. Officials noted that similar systems have proven effective during the recent cyclonic events by providing continuous and reliable data for early warning systems. The collected data will be shared with agencies such as the Indian National Center for Ocean Information Services and the Indian Meteorological Department to improve weather forecasting. With equipment already in place, installation is expected to begin shortly, marking a significant step in coastal resilience and scientific monitoring. For the Parikrama, it's Vibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
और अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ की धरती एक बार फिर प्रकृति संरक्षण की मिसाल बन रही है। बलौदा बाजार भाटपाड़ा जिले के बारनवापरा वन्यजीव अभयारण्य के में काले हिरणों की जो सफल वापसी है वो पारिस्थितिकी की बहाली का एक प्रेरक उदाहरण है। तो अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में करीब 245 वर्ग किलोमीटर में फैले बार नवापारा अभ्यारण्य में 1970 के दशक में विलुप्त हो चुके काले हिरण अब फिर से नजर आने लगे हैं। वर्ष 2018 में शुरू हुई पुनरुद्धार योजना के तहत लगातार वैज्ञानिक प्रयास किए गए। इसी कड़ी में फरवरी 2026 में एक महत्वपूर्ण पहल हुई, जब विशेषज्ञों की निगरानी में 30 काले हिरणों को सॉफ्ट रिलीज पद्धति से उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। इस पहल से सुनिश्चित किया गया कि ये हिरण नए वातावरण में बिना किसी तनाव के रच बस सकें। ब्लैक बक कंजर्वेशन सेंटर में बेहतर पोषण और वैज्ञानिक देखभाल से इन हिरणों की संख्या बढ़कर अब लगभग 200 तक पहुंच गई है। इन हिरणों की सुरक्षा के लिए हाई टेक निगरानी प्रणाली और GPS ट्रैकिंग के साथ ही नियमित पेट्रोलिंग भी की जा रही है। काला हिरण भारतीय उपमहाद्वीप का एक सुंदर और तेज दौड़ने वाला मृग है। ये हिरण खुले घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं और घास तथा छोटे पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम मन की बात में इस सफलता का उल्लेख कर इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। आज बार नवापारा के रामपुर ग्रासलैंड में दौड़ते काले हिरण यह संदेश देते हैं कि यदि प्रयास ईमानदार हो तो प्रकृति अपनी खोई हुई धरोहर को फिर से लौटा देती है। बार नवापारा अभयारण्य का काले हिरणों को संरक्षित करने का यह मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक केस स्टडी बन सकता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से विकल्प शुक्ला।
And now let us take you to Sambalpur. Nestled in the serene embrace of the Gandhamardhan Hills lies the sacred Nrisinghnath Temple of Bargarh district of Odisha. Every year, during the holy month of Baisakh, this peaceful destination comes alive with devotion and celebration as thousands gather for the famous Baisakh Mela.
As the dawn breaks, streams of devotees arrive from different parts of Odisha and neighboring states with prayers on their lips and faith in their hearts. They queue up for darshan of Lord Nrisinghanath. The sound of bells, Vedic chants and bhajans fills the air, creating a deeply spiritual atmosphere. A key highlight of the Mela is the holy path in the natural streams flowing from the hills. Devotees believe this sacred deep washes away sins and brings blessings. Surrounded by the forest and cascading water, the experience is both calming and divine. The Mela is also a vibrant showcase of local culture. Stalls offering handicrafts, traditional food and rural goods line the pathways. Folk music and dance performance add colors and energy, turning the pilgrimage into a celebration of life and tradition. With proper arrangements of safety, healthcare and basic facilities, the administration ensures a smooth experience for all visitors. The Nrisinghanath Baisakh Mela is more than a religious gathering. It is a beautiful blend of faith, nature and culture. A journey here leaves every visitor with peace in the heart and devotion in the soul. Par Parikrama, Supriti Mishra, Akashvani, Sambalpur.
Mizoram, with moderate climatic conditions, is home to various types of flora and fauna. Along with scenic beauty of the state, different types of flora and fauna have enriched the state. A four-day-long florist fair was recently held in Aizawl. The fair was organized to promote and empower hundreds of florists who took up this profession as a major source of income generation and livelihood. We have a report.
Mizoram is endowed with rich flora and fauna, making the florist profession as a viable alternative for income generation. With the aim of empowering women folks who are engaged in floriculture, a four-day-long florist fair was recently held at Aizawl Club Park in the heart of Aizawl City. The festival organized by Pangparzuar Association, PPZA, has attracted hundreds of visitors. Speaking to Akashvani News Aizawl, the organizers say that there are about 1,000 florists in the state. She said that being a florist is becoming an important profession for incoming generation. She said that the aim of organizing the florist fair is to empower and promote who are engaged in floriculture. She encouraged florists in Mizoram to cultivate and grow various types of flowers for income generation and livelihood.
Many households depends on the selling of flowers for their livelihood, and they even also benefit the attendees. We have a large number of visitors at this fair held at Aizawl Club Park. Mizoram is well known for its up-and-coming florists. We have made significant progress in using the flower and plants they have cultivated to enhance the beauty of their surroundings. And florists have a fantastic opportunity to sell and showcase their diverse flower collection at this flower fair and exhibitions.
Different varieties of flowers are exported from Mizoram each year. Mizoram is a home of rich variety of flora and fauna distributed in each lush green, diversified terrain with steep slopes separated by rivers rolling towards north and south. For Parikrama, this is Isaac from Akashvani News, Aizawl.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
In IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad were 137 for 5 in 14.3 overs against Kolkata Knight Riders in Hyderabad when reports last came in. Earlier, Sunrisers Hyderabad won the toss and opted to bat first. They are currently placed third, while Kolkata Knight Riders are placed in eighth position. In another match, host Gujarat Titans will face Punjab Kings in Ahmedabad at 7:30 p.m. Punjab Kings continue to lead the standings, and Gujarat Titans are placed at fifth position. In badminton, India was knocked out by France after 0-3 loss in the Thomas Cup semi-finals at Horsens in Denmark yesterday. It was hard luck for India as they did not have Lakshya Sen yesterday. Kidambi and Pranoy fought well, but they did not make their chances count on the day. And now news from the defense sector. The Indian Army contingent has departed to Cambodia for the second edition of India-Cambodia bilateral military exercise SINBAX-2. In a social media post, Additional Directorate General of Public Information of Indian Army said that the exercise is scheduled to be conducted at Teko Sen Phnom Thom Ria's Prof Royal Cambodian Air Force Training Center, Camp Basil, from the 4th to 17th of this month. It added that the exercise will be conducted with focus on company-level joint training for conduct of operations in sub-conventional environment.
और रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारत और कंबोडिया की टुकड़ियों के बीच आपसी तालमेल, समन्वय और ऑपरेशनल सिनर्जी को बढ़ाना है. मंत्रालय ने कहा कि यह संयुक्त अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के दौरान शांति रक्षक बलों को सामना होने वाली आतंकवाद रोधी अभियानों की मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप होगा. भारतीय सेना की टुकड़ी में 120 जवान शामिल होंगे, जबकि कंबोडियाई टुकड़ी में 160 जवान शामिल होंगे. अब हम याद करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन, और उन विशिष्ट व्यक्तियों की भी बात करेंगे.
On the 3rd of May 1939, Netaji Subhash Chandra Bose declared the formation of the Forward Bloc. It emerged as a faction within the Indian National Congress after Netaji's resignation from the presidency of the Indian National Congress in 1939.
Its constitution and program was adopted on the 22nd of June 1939 at its first All India session in Bombay, now Mumbai. In his presidential address, Subhash Chandra gave the concrete plan of action for winning Purna Swaraj in the immediate future.
After the great escape of Netaji Subhash Chandra Bose on the 17th of January 1941, Forward Bloc leaders and workers came under sharp torture and humiliation. A huge number of them were put in jails and confined.
Forward Block was declared banned in June 1942. Forward Block, even when it was declared illegal, supported the Quit India movement in 1942. On the national level, leaders of the party like Sardul Singh, Sheila Bhadr, H.V. Kamath, R.S. Ruikar, K.N. Joglekar, Mukundalal Sarkar, U. Muthuramalingam Thevan were noteworthy.
After independence, the party re-established itself as an independent political party with the main stronghold in West Bengal.
We commemorate freedom fighter Jwala Prasad, who was executed by the British on the 3rd of May 1860. He belonged to Kanpur, Uttar Pradesh, and took a prominent part in the First War of Indian Independence. He led the army at Kanpur and fought in several engagements against the British forces.
He became the chief lieutenant of Nana Saheb and was also present at Sati Chaura Ghat with Tantia Tope, Azimullah Khan, Bala Saheb and Tikka Singh when the British were leaving Kanpur. He was captured by the British and sentenced to death. He was executed on the gallows of Sati Chaura Ghat, Kanpur, on the 3rd of May 1860. We salute this great martyr.
We also remember revolutionary freedom fighter Sushil Chandra Kumar Sen Gupta, who was martyred on the 3rd of May 1915. He was born in December 1892 in Assam and later moved to Kolkata, West Bengal. During the trial of Aurobindo Ghosh in the Alipore bomb case, when a sergeant was caning a group of agitated persons, Sushil hit him and was caned for that. For his being a member of the Maniktala group of revolutionaries, he had been set up in the Alipore bomb case but was acquitted.
After his release, Sushil Chandra took part in the Baliaghat raid in Kolkata and in the assassination of informer Nirod Haldar in February 1915. On the 3rd of May 1915, he took part in the Khalilpur raid in Nadia, where two sub-inspectors and some constables tried to stop them. Sushil Chandra was shot dead by the police in the clash that ensued. We salute the great martyr.
We also remember revolutionary freedom fighter Jagdish Chandra Rai, who was martyred on the 3rd of May 1931. A resident of Dera Ismail Khan, Northwest Frontier Province, he came to Delhi and joined the revolutionary movement. He was killed in an encounter with the police in a bus near Shalimar Bagh, Lahore, on the 3rd of May 1931. We salute the great martyr.
We also remember Indian National Army member Kesari Chand Sharma, who was executed by the British on the 3rd of May 1945. A resident of Delhi, Kesari Chand was captured by the British forces during fighting near Imphal on the Burmese front. He was tried for waging war against the King Emperor in December 1944 and sentenced to death by a court-martial. He was executed in Delhi jail on the 3rd of May 1945. We salute this great son of the soil.
We also remember martyr Bhagat Himbaram, who took part in the Quit India movement and Lathi Pahar agitation. Born at Santhal Parganas in Jharkhand, Bhagat was arrested on the 9th of May 1943 and jailed for 3 years. He died in Raj Mahal Jail on the 3rd of May 1944. We salute the great son of the soil.
और आज ही पुण्यतिथि है भारतीय सेना के कमांडर रहे जगजीत सिंह अरोड़ा की। उनका जन्म झेलम में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में उन्होंने पूर्वी मोर्चे पर करारी मात देकर बांग्लादेश नाम के नए देश को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने वाले हीरो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का जन्म 1916 में हुआ था। और आज ही पुण्यतिथि है काशी के प्रसिद्ध योग गुरु और पद्मश्री से अलंकृत स्वामी शिवानंद बाबा की। आज ही के दिन वर्ष 2025 में 128 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था। वे भारत के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन योग, मानवता सेवा और विशेष रूप से कुष्ठ रोगियों की देखभाल में समर्पित किया। वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में उन्हें मान्यता मिली थी।
And 3rd May is also the death anniversary of Howard Taylor Ricketts, an American pathologist after whom the bacteria family Rickettsiaceae and the order Rickettsiales are named. Ricketts was devoted to his research and on several occasions injected himself with pathogens to study their effects. The pathogen causing Rocky Mountain spotted fever, Rickettsia ricketsii, was named after him.
हम याद कर रहे हैं भारतीय लेखिका, अभिनेत्री और एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला परांजपे को. आज उनकी पुण्यतिथि है. उन्हें भारत में परिवार नियोजन और यौन शिक्षा के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्यों के लिए जाना जाता है. वह भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और शिक्षाविद सर आर पी परांजपे की पुत्री थी. 1930 के दशक में जब परिवार नियोजन जैसे विषयों पर बात करना भी वर्जित होता था, उन्होंने पुणे में क्लिनिक खोलकर लोगों को जागरूक करने का काम किया. समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. वे एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी और चूंकि वो सिनेमा और कला से भी जुड़ी थी तो ऐसे में उनके अभिनय की भी बात करते हैं. उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक वी शांताराम की फिल्म दुनिया ना माने में अभिनय किया था जो सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करती थी.
सुनत का है नहीं? चलो
मुझे परेशान न करो, मैं नहीं आऊंगी.
कहा
मेरे सामने से अपना मुख काला करो.
हाँ दुष्ट तरीके, कब से देखा है हम तो स्वरूप पर कौन पाथर धर दिन है. पाजी कहूँ की जितना हम चुप पे रही थे उतो बढ़ जात है. अब तनिक हूँ तो बोल, मारे लपड़ों के मुँह लाल कह दे हो.
आओ दिखाओ बहादुरी.
तो ले
निर्दयी कसाई, मार मार बूढ़े के गले बांधकर मुझे कुएं में झोंका. ले अब गला दबा के जान ले, अच्छा होगा मुसीबत से छूट जाऊंगी.
उतार सूरत, होश में है क्या?
आज ही पुण्यतिथि है प्रेमेंद्र मित्र की. वे बांग्ला साहित्य के एक दिग्गज कवि, उपन्यासकार और लघु कथाकार थे. उन्होंने बंगाली साहित्य को बहुत सी प्रसिद्ध कृतियां दी और उन्हें मुख्य रूप से उनके कालजयी पात्र घनाधा और बांग्ला साहित्य में विज्ञान कथाओं यानी कि साइंस फिक्शन की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है. वे कल्लोल युग के एक प्रमुख कवि थे और उनकी कविताओं में सामाजिक चेतना और आम आदमी के संघर्षों का चित्रण मिलता था. बच्चों के लिए भी उन्होंने विज्ञान और रोमांच से भरपूर ढेरों कहानियां लिखी. उन्होंने विद्यासागर और सागरिका जैसी उल्लेखनीय फिल्मों का निर्देशन भी किया. सुनते हैं सागरिका फिल्म का ये गीत.
Anatomy, pathology, medicine, surgery, anukato juri juri namati ahamuli ramra. Amra, medical college pori.
भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1976 में, जबकि उनकी काव्य कृति सागर थे के फेरा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान रविंद्र पुरस्कार से भी वे सम्मानित किए जा चुके हैं.
वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग निकोलो डी बर्नार्डो डे मैकियावेली because it's his birth anniversary on 3rd May. He was an Italian diplomat, politician, historian, philosopher, writer, playwright and poet of the Renaissance period. He has often been called the father of modern political philosophy and political science. For many years, he served as a senior official in the Florentine Republic with responsibilities in diplomatic and military affairs. He wrote comedies, carnival songs and poetry.
हम याद कर रहे हैं अभिनेत्री नरगिस दत्त को. आज उनकी पुण्यतिथि है. नरगिस भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक और पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री थी. उन्हें मुख्य रूप से फिल्म मदर इंडिया में उनके प्रतिष्ठित अभिनय के लिए जाना जाता है. इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला और यह फिल्म ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी.
दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा. जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा. दुनिया में हम आए.
Regarded as one of the greatest actress in the history of Indian cinema, she made her screen debut in a minor role at the age of 5 with Talaash-e Haq in 1935, but her acting career actually began with the film Tamanna in 1942.
और रेशमा उनकी और राज कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती थी, तो उन्होंने आवारा, श्री 420 और चोरी चोरी जैसी कई हिट फिल्में दी. सुनते हैं उनके फिल्म की प्यारी सी मेडली.
दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला.
आ
और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के संघ को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए मुझे यानी जया और रेशमा तिवारी को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने के, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड। नमस्कार।
नमस्कार।
सुने दिल वाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला।